प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे।
ओम शांति। हम सब के बीच में प्यारे बाबा की अमूल्य रतन यज्ञ की वरिष्ठ राजयोगिनी शिलू दीदी जी हम सभी के बीच में उपस्थित है। एक हाथ की ताली से सभी स्वागत करेंगे। शिलू दीदी जी, आपका इस सभा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपका विषय है रहन दिल कल्याणकारी दाता स्वरूप कैसे बने। आदरणीय राजयोगिनी शिलू दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण बच्चे इस संगम युग पर कितने न भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम इस समय प्रभु पालना में चल रहे हैं। स्वयं प्रभु माता पिता के रूप में हमारी पालना कर रहे हैं। प्रभु पालना के साथ परमात्म पढ़ाई पढ़ रहे हैं, स्वयं परमात्मा शिक्षक बन हमें ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग से श्रृंगार रहे हैं। तो प्रभु पालना, परमात्म पढ़ाई और बेहद की प्राप्तियां सतगुरु रूप में हमें करा रहे हैं, पावन भी बना रहे हैं। घर जाने का श्रेष्ठ मार्ग भी बता रहे हैं। तो इतनी सब उपलब्धियां इस संगम युग पर हम बच्चों को मिल रही है और दुनिया इन सब को ढूंढ रही है, इन सब को पाने की इच्छुक है। दुनिया का क्या हाल है वो तो अभी आपने बहुत सुना, वो तो वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं, और स्वयं आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुबह से रात्रि तक सुनते रहते हैं। लेकिन हमारा फर्ज क्या है? क्या हम अपने फर्ज को समझ रहे हैं? क्या हम उन आत्माओं की तरह तो नहीं अपने को समझते हैं कि हम भी कहीं ऐसे ही हैं? लेकिन हमें जो पालना, पढ़ाई और प्राप्ति हुई है उसका केवल हमें निश्चय ही नहीं, उसका केवल नशा ही नहीं, लेकिन दाता बन करके हमें औरों को देना है। और उसके लिए रहम दिल बनना है, कल्याणकारी बनना है, क्योंकि बिना रहम दिल बने, बिना कल्याणकारी बने हम दातापन की स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो रहम दिल भी बनना है, कल्याणकारी भी बनना है, और दाता भी बनना है। ये आज का हमारा विषय है। लेकिन औरों के प्रति ये तीनों बातें बनने से पहले स्वयं पर ये तीनों बातें अप्लाई करनी है। अपना भी रहम दिल बनना है। कई बार हम देखते हैं दूसरों पर तो रहम कर लेते हैं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, जाने दो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ, क्षमा कर दो, भूल जाओ, रहम कर दिया। परंतु खुद पर रहम नहीं करते हैं। खुद पर कैसे नहीं रहम करते हैं? अगर हमने कोई भूल की, दूसरे ने भूल की, तो उसको तो हम क्षमा प्रदान कर देते हैं। लेकिन हमने अगर कोई भूल की, उसके लिए हम खुद को भी क्षमा कर दें, ये कई बार और मुश्किल लगता है। क्योंकि एक से भी देखा गया है कि हमने कोई अगर कड़ी भूल की तो खुद कोई कोसते रहते हैं, उस भूल को ही याद करते रहते हैं, उस भूल को भुला नहीं पाते हैं। दूसरे की भूल तो भुला देंगे पर खुद की भूल नहीं भुला पाते हैं और खुद ही खुद को दुख देते रहते हैं। इसलिए अपने प्रति भी रहम दिल बनना बहुत जरूरी है। चलो भूल हो गई, बाबा को सच बता दिया, बाबा ये मैंने भूल की, और फिर बाबा से प्रतिज्ञा कर ली कि बाबा फिर ये भूल मैं नहीं करूंगा। भूल की सच्चाई बता दी, छिपाया नहीं, फिर वह भूल न करने की प्रतिज्ञा कर ली, तो उसके बाद उसे भूल जाना जरूरी है। क्योंकि अगर हमने नहीं बुलाया तो हम अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति कितना व्यर्थ गंवाते हैं। क्योंकि भूल तो हो गई, एक बार कमान से तीर निकल गया, वो वापस तो आ नहीं सकता है, निकल गया तो निकल गया। इस मुख से कुछ शब्द ऐसे निकल गए तो निकल गए, वापस चाहे आप कितना भी कहो चलो माफ कर दो, माफ कर दो, वो व्यक्ति भी माफ कर दे, पर हम खुद को माफ कर पाते हैं? मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, पता नहीं अभी क्या होगा, पता नहीं के उधेड़ बुन में हम अपने आप को फंसा देते हैं। क्योंकि जो होना होगा वो तो होगा ही, पता नहीं क्या होगा ये कहने से कोई जो बुरी बात होनी होगी वो कम तो नहीं होगी, वो तो होगी, लेकिन उसका मैं सामना कैसे करूं, उसके लिए अपने अंदर शक्ति भरनी होती है। अगर वो शक्ति नहीं भरेंगे और अगर उस भूल की चलो सजा मिली और शक्ति है नहीं, तो सजा तो थोड़ी सी होगी, परंतु शक्ति जो नहीं भरी उसकी जो सजा होगी वो तो न जाने कितनी गुना होगी। इसीलिए स्वयं के प्रति भी रहम दिल बनना बहुत जरूरी है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अलबेले बन जाए या ये सोचे कोई बात नहीं, भूले तो होती रहती है, सभी करते हैं, हमने भी कर ली तो क्या हुआ, कौन संपूर्ण बनाए, हर एक से भूल होती रहती है, हम कोई भगवान थोड़ी है। दुनिया में तो ऐसे कहते हैं जो अलबेले होते हैं ना, वैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन, यानी भूले करना ये तो मनुष्य का काम है, तो फॉरगिव इज डिवाइन। हम मनुष्य का काम है भूले करना और भगवान का काम है माफ करना। तो इंसान तो भूले करता ही रहेगा और भगवान का काम है माफ करना है, क्योंकि वो तो रहम दिल है। इसका मतलब हम भूले करते रहे और भगवान माफ करता रहे। पर हमें भी सुधरना है ये नहीं सोचते, बस भगवान से माफी मांग ली, हो गया मेरा काम, सॉरी कह दिया, कोई भूल हुई ना सॉरी कह दिया। छोटे बच्चे भी ऐसे कहते हैं, कोई भूल की मम्मी ने कहा बेटा ऐसे कैसे किया, मम्मी सॉरी, फिर दोबारा वही भूल करेगा, मम्मी सॉरी, मम्मी सॉरी, सॉरी सॉरी करना तो बड़ा सहज है। तो आखिर सॉरी सॉरी करते वो भूल भी करता रहेगा, माफी भी मांगता रहेगा, तो चलो दो चार बार तो माफ कर देगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा भी माफ कर ले तो बच्चे के लिए नुकसानकारक है, बच्चे को ही नुकसान होगा। चलो माँ को क्या है, चलो भूल माफ कर देगी, पर बच्चे के लिए नुकसानकारक है। टीचर के लिए तो चलो आजकल, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि टीचर सजा देता है, पहले जमाने में तो टीचर सजा देता था, पर आजकल टीचर सजा नहीं दे सकता है। हाँ दे सकता है, बच्चे को कुछ कह सकता है, कुछ नहीं कह सकता है। अगर बच्चे को थोड़ी ज्यादा डांट लगा ले तो वो बच्चा तो रोता रोता घर जाएगा, मम्मी को शिकायत करेगा, मम्मी शिकायत बच्चे की जो सुन, उस टीचर की शिकायत सुन लेगी, तो ये तो नहीं कहेगी बच्चे तुमने भी कोई भूल की होगी, वो नहीं कहेगी, वो तो मोह के वश है, और जाकर सीधा प्रिंसिपल के पास रिपोर्ट करेगी मेरे बच्चे को इस टीचर ने ऐसे किया, तो टीचर बिचारी का बुरा हाल। तो इसलिए टीचर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बच्चे को चलाते हैं। पहले जमाने में कहा जाता था, अंग्रेजी में ये बड़ी कहावतें, हिंदी में उस प्रकार की भी होगी, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कि आपके हाथ में छड़ी हो, टीचर के हाथ में छड़ी हो, और अगर छड़ी को आपने यूज नहीं किया, बच्चे को मारा नहीं, तो आप बच्चे को बिगाड़ देंगे, क्योंकि सजा नहीं देते हैं, तो बच्चे को मारना भी जरूरी है, नहीं तो बच्चा सुधरेगा नहीं। तो स्पेयर द रॉड माना वो छड़ी को यूज नहीं करो, स्पॉइल द चाइल्ड बच्चे को बिगाड़ो। लेकिन आजकल तो ऐसा जमाना है किसी को कुछ कह ही नहीं सकते, कई हम न्यूज सुनते रहते हैं, माँ ने बच्चे को कहा बच्चे ऐसे मत करो, बच्चे ये ठीक नहीं है, बच्चे ये ठीक नहीं है, तो वो बच्चा सहन नहीं कर सका और जा करके सुसाइड कर लिया। अब बच्चे ने सहन ही नहीं किया, सुसाइड कर लिया, बताओ अपने जीवन से हाथ धो दिया, क्योंकि वो सहन नहीं कर सका, माँ ने ऐसे कहा, क्यों कहा। या माँ ने बच्चे को कहा बेटा ये अच्छी बात नहीं है, बेटा ये मत करो, इतना गुस्सा आया, बंदूक पिताजी की रखी थी उठा के माँ को ही मार डाला। आजकल ये स्थिति है, तो इसीलिए माँ भी डरती है बच्चे को कुछ कहें तो कहीं ये सुसाइड कर ले या मुझे ही ना मार डाले, भाई ठीक है जो चाहो सो करो, पर उससे तो बिगड़ते ही जाते हैं। किसी ने हमको बहुत अच्छी बात, एक हंसी की बात कही कि ये जो हमारी जनरेशन है ना, हम लोग जिस उम्र के हैं, हम लोगों ने अपने माता पिता का कितना सुना होगा और उनकी आज्ञा पर चले होंगे, पर अभी दोहरा रूप है, माँ बाप की आज्ञा पर भी चले और बच्चों की आज्ञा पर भी चलना है। ऐसे नहीं कि हमारी आज्ञा पर बच्चे चलेंगे, लेकिन हमको उनकी आज्ञा पर चलना होता है। जी हजूर आज बाबा ने कहा जो हुकुम, तो बच्चों को भी यही माँ बाप कहते जो हुकुम, राजा को तो प्रजा जो हुकुम तो क्या कहेगी, पर बच्चे जो कहे तो जो हुकुम। हम तो विदेश में देखते हैं कि माँ अपने बच्चे को ये कभी नहीं कहेगी कि बेटा ये करो, कभी नहीं कहेगी, पहले उनसे अगर करवाना है ना तो उनसे पूछेगी पहले, बेटा ये करोगे, बच्चा कहेगा नहीं करूंगा, तो माँ कुछ नहीं कह सकती है, कुछ भी नहीं कह सकती, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। और कई ऐसे बच्चे उतने उल्टे होते हैं, अगर माँ कहेगी ये करो तो नहीं करेगा, और कहेगी नहीं करो तो करेगा। ऐसे भी उल्टे हैं, तो इसीलिए ऐसी स्थिति बन गई है। तो क्या उचित है? उससे उचित है कि खुद को भी रहम करो, दूसरों को भी रहम करो, क्योंकि ये सब के हिसाब किताब इस अंतिम जन्म में चुकते हो रहे हैं। 63 जन्मों के हिसाब किताब इस समय चुकते हो रहे हैं। किसने किस जन्म में क्या कर्म किया होगा, क्या मेरे साथ उसका संबंध होगा, क्या मैंने उसके साथ किया होगा, उसने मेरे साथ क्या किया होगा, वो सारे हिसाब किताब अभी इतने हो गए हैं जो अभी उसको चुकतु करना है। जो बाबा कहते हैं कि अभी और कुछ भी हिसाब किताब मत बनाओ, क्योंकि अगर और हिसाब किताब बनाएंगे किसी भी विकार के वशीभूत कोई भी कर्म करेंगे तो एक गुना तो क्या 100 गुना हो जाएगा। क्योंकि बाबा को तो हमने अपनी सब बुराइयां दे दी ना, बाबा के पास आए मन बुद्धि से समर्पित हो गए, बाबा हम आपके हैं, तो बाबा के हो गए तो ऐसे तो नहीं है कि केवल तन मन धन यही बाबा का समझा, लेकिन जो कुछ भी है, जो कुछ मेरे अंदर था बाबा ये आपका, तो बुराइयां भी हम शिव को अर्पित करेंगे। अभी शिवरात्रि आ रही है तो अक के फूल चढ़ाएंगे, धतूरा भांग पता नहीं क्या क्या चढ़ाते रहते हैं, तो कड़वे कड़वे चीजें भी चढ़ाएंगे, सब शिव जी के ऊपर सब चढ़ाते हैं, भगवान तो वही लेता है। बाकी तो अच्छे अच्छे गुलाब के फूल तो शिव जी पर कभी नहीं चढ़ाए, चढ़ाए किसी ने कोई बेकार की चीजें ही चढ़ाते, चलो दूध भी चढ़ाएंगे या कुछ भी चढ़ाएंगे, अभिषेक भी करते हैं। लेकिन इसलिए मुझे याद है एक बार मैं मॉरिशस में थी तो वहाँ शिवरात्रि पर बहुत बड़ा मेला लगता है। मैं एक साल मॉरिशस में रही, शुरू शुरू में वहाँ सेंटर स्थापित किया तो शिवरात्रि पर बहुत बड़ा मेला लगता है और वहाँ कांवर उठा करके ले आते हैं। तो वो गंगा तालाब बना हुआ है, जब भारत से लोग मॉरिशस गए थे तो गंगा जल लेकर के गए थे,
अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
तो आज से 150-200 साल पहले अंग्रेजों का जब यहाँ राज्य था तो भारत से काफी सारे लोगों को मॉरिशस ले गए थे गन्ने के खेतों में काम करने के लिए। तो वे भारत के लोग अधिकतर बिहार यूपी के थे, तो वे सब गंगा जल अपने साथ ले गए थे क्योंकि गंगा जल का बड़ा महत्व है। तो वहाँ पर एक तालाब था, उसमें उन्होंने गंगा जल डाला था और जैसे कि उनके लिए वो गंगा है तो गंगा तालाब ऐसे कहते हैं। तो वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है मॉरिशस में और वहाँ से जल लेकर के आते हैं, पैदल आते हैं और शिव के मंदिरों में शिव को चढ़ाते हैं। तो हमारा जहाँ सेंटर है था तो वो सेंटर बिल्कुल उनके रास्ते में आता था, तो कांवर लेके आते थे, जल लेकर के आते थे, तो रास्ते में उनको नींबू पानी ये सब, क्योंकि पैदल आते थे। तो हमने एक भगत से पूछा, यात्री से पूछा, मैंने कहा कि आप इतना पैदल जाते हो और पैदल आते हो कितने घंटे हो घंटों और शिवरात्रि पर आप जल चढ़ाते हो, तो इससे क्या आप क्यों ऐसे चक्करते हो? तो उन्होंने बड़ा विचित्र जवाब दिया, तो कहा कि शिव जी को बहुत कोप आता है, कोप यानी गुस्सा आता है, वो उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए गंगा का जल ला करके शिवजी पर चढ़ाते, ये जवाब दिया। मैंने कहा इतना गुस्सा आता है क्योंकि आंख खोली और विनाश किया, शिव और शंकर को तो एक समझते हैं। तो देखो हाँ, जल चढ़ाया ताकि ठंडा हो जाए। मुझे वो भी याद है, बनारस में हम गए थे, बनारस, तो आज भी बाबा ने बनारस को याद किया। बनारस के लिए कहते काशी, काशी का मरण, ऐसा मरण, काशी में अगर कोई मरता है या काशी में उसकी अस्थियां लाते हैं तो उसको मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए कई जब वानप्रस्थी हो जाते हैं, बूढ़े बहुत हो गए, तो काशी में आकर के पहले वास करते थे। बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं, उनके लौकिक पिताजी बाबा के जब बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने बाबा को कहा कि अभी तो मुझे काशी वास कराओ। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मैं अपने पिता को काशी में लेकर के आया था, एक मकान लेकर के दिया, कुछ नौकर चाकर साथ में रखे कि आप इनका ये इनको संभालेंगे, और उनका अंत वहाँ काशी में, यानी वहीं डेथ हुई थी उनकी। तो कहने का भाव है कि काशी में मरण हो तो मुक्ति मिलेगी। तो गंगा जल का बड़ा महत्व है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो गंगा जल है, कोई ऐसे शिवजी पर चढ़ाने से तो नहीं कोई पाप नाश होंगे, लेकिन मैं काशी जब गई थी तो वहाँ बहुत, जो विश्वनाथ का मंदिर है बहुत मैल है, बहुत गंदगी है, क्योंकि बहुत जल चढ़ाते हैं तो चारों ओर गंदगी है, नंगे पैर जाना पड़ता है। कई विदेशी आए हुए थे वो भी सब आते हैं, पुलिस का बड़ा पहरा है चारों तरफ, क्योंकि कहीं भी अटैक कर ले कोई। तो हमने एक पुजारी से पूछा कि देखो यहाँ इतने लोग आते हैं, दूर दूर से विदेशों से लोग आते हैं, इनकी थोड़ी सफाई तो रखो, सफाई क्यों नहीं रखते? तो कहता है माता जी ये ना सब जो भगत आते हैं अपना पाप यहाँ छोड़ के जाते हैं। अपना पाप यहाँ छोड़ के जाते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात, कहीं सफाई नहीं रख सकते हैं तो बस ये कहना बड़ा आसान है कि पाप छोड़ के जाते हैं। तो भगवान को तो ये भी बुराइयां ही चलो देनी है। तो इसीलिए बाबा तो ये भी कहते हैं, तो हमने जो बाबा से वायदा किया है कि बाबा ये तेरा, हम तेरे हाँ, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा, तो जो बुराइयों को या अशुद्ध संस्कार जो हमारे थे वो भी तो बाबा को अर्पित किए ना, वो तो मेरे थे ही नहीं, वो भी चलो बाबा को अर्पित कर रहे हैं, इसी का ही तो भक्ति मार्ग में स्वरूप है ना। पाप वहाँ दे आकर आते हैं या कोप ठंडा करके आते, गुस्सा या जो कुछ अपनी बुराइयां ही हैं। तो वास्तव में बाबा कहते हैं ये तो आपका है ही नहीं, तो शिव पर सब कुछ चढ़ा देते हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे तो अपने ऊपर भी रहम करो, अपना भी कल्याण करो। तो ये विकार तो हमने दे दिए, तो जब विकार दे दिए तो कोई भी नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। कई बार बाबा यहाँ तक कहते लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना है। अगर कोई ऐसी बात है तो कानून है, चलो देर लगती है, कानून ठीक नहीं काम कर रहा है या जो कुछ भी है, पर अपने हाथ में कानून नहीं लेना है। क्रोधवश, ईर्ष्यावश, द्वेषवश कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है, और रहम दिल बन करके माफ भी करना है, क्योंकि क्या पता किस जन्म का कौन सा कर्मों का हिसाब किताब है। और केवल माफ ही नहीं करना है पर भूल भी जाना है, अपने प्रति भी तो दूसरों के प्रति भी। कई बार क्या होता है कि माफ तो कर लेते हैं लेकिन क्षमा करने के बाद भूल नहीं सकते। जैसे वो व्यक्ति सामने आएगा वो बात फिर याद आ जाएगी, भले माफ कर दिया वो बात याद आ गई, अगर बात भी याद आ गई तो भी कहाँ क्षमा किया, क्योंकि खुद को फिर क्षमा नहीं कर रहे, दुख तो अनुभव करते क्योंकि भूल नहीं सके। तो भुला भी सको उसके लिए फिर कल्याणकारी बनना पड़े, तब रहम दिल कहला सकेंगे कि इसका भी भला हो, चलो कुछ ले लिया क्या फर्क पड़ता है, इसका भी भला हो। तो इसका भी भला हो, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि बाबा जब बनारस में जाते थे, बनारस बहुत जाते थे बाबा, बाबा को बनारस बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए अंत में जब बाबा को साक्षात्कार हुए और उनके गुरु ने कहा कि आपको एकांतवास में जाओ और वहाँ आपको कुछ और भगवान से प्रेरणाएं मिलेगी, तो बाबा को बनारस ही याद आया, मैं वहीं जाऊंगा और वहाँ ही मुझे एकांतवास मिलेगा और मैं अनुभव करूंगा भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे भी रहम दिल बनो और कल्याणकारी बनो। तो बाबा वहाँ क्या करते थे, गंगा में जाते थे, वहाँ पैर रखते थे और जल लेते थे, और जल लेकर के जैसे अंजलि देते ना, तो सबके कल्याण प्रति, सबके उठा करके सबके कल्याण प्रति, ऐसे नहीं किसी व्यक्ति का नाम नहीं, ऐसे नहीं मेरे बच्चों के कल्याण प्रति, मेरे फलाने के कल्याण, लोग तो पर्सनल नाम लेते हैं इनके कल्याण प्रति, लेकिन बाबा की पहले से एक बेहद दृष्टि थी, तो उठा करके अंजलि जैसे देना, सबके कल्याण प्रति, सबके कल्याण प्रति। तो देखो बाबा की दृष्टि वृत्ति पहले से जैसे बेहद की थी, तो सबका कल्याण हो, सबका भला हो, केवल मेरा ही भला थोड़ी हो, हाँ मेरे बच्चों का ही केवल भला, ये भी तो भगवान के बच्चे, वो भी भगवान के बच्चे हैं। तो जब ये हमारी भावना होगी तब दाता कहला सकेंगे, दाता ऐसे नहीं कहला सकेंगे। बाबा यही कहते हैं कि देखो केवल मैं ही दाता नहीं हूँ, तुम बच्चे भी मास्टर दाता बनते हो। कई आते हैं हमारे पास, कई प्रश्न करते हैं, कई बातें कहते हैं कि फलाने ने मेरे को धोखा दिया, ये दिया वो दिया, बहन जी हम क्या करें। तो हम कहते हैं अगर कानूनन कानूनी लड़ाई है तो लड़ो, भले कानून का दरवाजा खटखटाओ, पर अपने हाथ में लॉ मत उठाओ, क्योंकि अगर लॉ उठाएंगे तो लेने का देना पड़ जाएगा। इसीलिए थोड़ा सोच समझ करके आगे बातें सोच करके ये करो, दुनिया तो है ही धोखेबाज, इसलिए केवल कहना ही नहीं, कह करके भी दुखी नहीं होना है, परंतु ये भी समझना है कि अंतिम हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। और जितना हम रहम दिल भी बनते हैं, कल्याणकारी बनते हैं, परोपकारी बनते हैं, दाता बनते हैं, बाबा कहते हैं उनकी दुआएं जरूर आपको मिलती है। ऐसे नहीं कि आपके जेब से गया माना खत्म, जेब से वास्तव में जितना दाता बनते उतना हमने देखा है मिलता है। हम बड़ा दिल रखते हैं तो लोग भी हमारे प्रति बड़ा दिल रखते हैं, भले कोई धोखा 10 में से 2-4 धोखा दे सकते हैं, लेकिन सबके सब तो धोखा नहीं देते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा तो ऐसी बुरी नहीं है। तो इसीलिए इन तीनों शब्दों का आपस में कितना गहरा संबंध है, बाबा भी कितना बड़ा दाता है। इसलिए देखो साकार में भी बाबा जब वाणी चलाते थे तो बाबा कभी वो थोड़ों को देख करके वाणी नहीं चलाते थे। कई बार आप मुरली में सुनते होंगे बाबा कितनों को याद करते हैं, तो बाबा विदेश के बच्चों को भी याद करते हैं, क्यों, क्योंकि बाबा की बुद्धि हद की बुद्धि नहीं थी, लौकिक से जैसे बाबा न्यारे हुए अलौकिक में आए तो लौकिक के प्रति भी हद की बुद्धि खत्म हो गई, मेरापन खत्म हो गया, भले लौकिक में उनके बच्चों को होगा ये मेरे पिता है, पर बाबा को ये था ये सारे मेरे बच्चे हैं। इतने हद तक मेरे बच्चे सोचा, केवल इंसान को ही मेरे बच्चे नहीं सोचा, पर जानवर पक्षी उनको ही बच्चे समझा। बाबा के आगे बंदर आते थे, पक्षी आते थे, एक दिन वो पक्षी नहीं आया, बुलबुल आती थी रोज, बाबा उनको दाना देते थे रोज, वो आती थी, तो एक दिन वो बुलबुल नहीं आई तो बाबा ने कहा आज वो बच्ची नहीं आई है, तो किसको लगा कि कौन सी बच्ची, कोई बहन के लिए बाबा याद कर रहे होंगे, तो बाबा से पूछा बाबा कौन सी बच्ची, बच्ची वो बुलबुल जो आती थी ना वो बच्ची आई नहीं है, आज बच्ची आई नहीं लेने के लिए दाना। तो देखो बाबा के लिए बुलबुल भी बच्चे, तो बंदर भी बच्चे, तो सब बच्चे। इतना रहम दिल बाबा, बड़ा दिल, दाता का दिल। तो जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा तो बिल्कुल दाता जैसे बन गए, और सब कुछ शिव बाबा का ही समझा। और उसके बाद कैसे बाबा की दृष्टि इतनी उपराम हो गई, जो बात मत पूछो। अब बाबा ने यहाँ तक कर कई मुरलियों में कहते, तो क्या बाबा भूखा मरा? नहीं बच्चे, बाबा भूखा नहीं मरा। और ही कितना बड़ा बेहद का परिवार हो गया। कई लोग हम लोगों को कहते कि आपने परिवार छोड़ा। हम कहते परिवार छोड़ा कहाँ है, हमारा तो और ही बड़ा हो गया परिवार। छोड़ा थोड़ी, छोड़ा क्या, और ही बड़ा परिवार हो गया। वो जो हद का परिवार, वो भी बेहद के परिवार में मिक्स हो गया। अभी तो यहाँ तक हम तो यही अनुभव करते हैं, सारी दुनिया ही अपनी दुनिया है, सारा संसार, सारे देश अपने ही हैं। क्योंकि बाबा के विदेश के बच्चे आते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं, तो कुछ लगता ही नहीं है कि हम कोई कोई पराए देश में आते हैं या पराए लोगों से मिल रहे हैं। ये पराई भाषा है, हम जानते नहीं हैं, जानते तो नहीं है उनकी भाषा, लेकिन फिर भी ऐसे ही लगता है ये सब अपने हैं। तो हद का सब बेहद हो गया, तो ब्रह्मा बाबा के लिए कितना सारा बेहद हो गया होगा। हमारे लिए तो फिर भी सीमा में है, हमारे भाई बहन है, उनके बाबा के तो सारे बच्चे हो गए। यहाँ तक कि इतने हद तक बच्चे जो बाबा की लौकिक में युगल थी पत्नी, बाबा उनको भी बच्ची बच्ची कहते थे, अब बताओ हा? और वो भी बाबा को बाबा बाबा कहती थी। तो देखो किसका त्याग बड़ा, उनकी युगल का त्याग बड़ा या बाबा का त्याग बड़ा। कई बार आता है कि रामायण में दिखाते हैं कि सीता राम के साथ चली गई, वनवास चली गई, सब महल छोड़ करके जंगल में गई, परंतु राम तो उसके साथ था बिचारी। वो हाँ, वो लक्ष्मण की जो पत्नी थी, उसका त्याग तो और ज्यादा बड़ा था ना, जो उसका पति भी गया और वो खुद वहां अलग। तो किसका त्याग बड़ा, सीता का त्याग बड़ा या वो अनसुया, क्या नाम था लक्ष्मण की, उर्मिला, उसका त्याग बड़ा। अगर देखे तो उर्मिला का त्याग सीता से भी बड़ा था। और कम सीता ने तो फिर भी कितनी भूले की, उर्मिला तो बिचारी उसी में थी। राम का त्याग बड़ा या भरत का त्याग बड़ा, किसका त्याग बड़ा, यानी अगर हम सोचे तो सब कंपैरेटिव है। इसीलिए वास्तव में बाबा हम बच्चों को जब ये रहम दिल की स्थिति या कल्याणकारी दृष्टि कहते या दातापन की स्थिति कहते हैं, उसमें बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। बाबा भी जब बच्चों को देखते थे, भले 15-20 बच्चे बैठे होंगे बाबा के सामने, मुरली तो कोई हर वक्त तो पार्टियां नहीं आती थी मधुबन में, और बाबा तो रोज मुरली चलाते थे, एक दिन भी मुरली बाबा मिस नहीं करते थे सुनाए बिना। और जिस दिन समझो कुछ ऐसी बात थी, जैसे 18 जनवरी के दिन बाबा को थोड़ी तकलीफ हुई चेस्ट में, तो मुरली नहीं चलाई, लेकिन शाम को बाबा को ख्याल आया कि आज बच्चे सोचते होंगे बाबा की मुरली नहीं आई, बाबा ने मुरली नहीं चलाई, क्या तकलीफ होगी। तो बच्चों को मुरली जरूर चाहिए रोज की, तो रात को बाबा ने मुरली चलाई है और उसके बाद बाबा कमरे में गए हैं। तो बच्चे ही सारा टाइम बुद्धि में थे। तो दातापन की स्थिति, जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तो शिव बाबा तो है ही दाता, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी कम दाता नहीं थे, अज्ञान काल में भी दाता थे। हद बेहद में बदल गया, तभी तो बाबा ने आज कहा कि तुम बच्चों को भी माता पिता को फॉलो करना है। माता पिता को फॉलो करना माना माता पिता के कदमों पर चलना। तो वो कैसे चल सकेंगे जब दाता की स्थिति होगी, और बाबा कैसे, दृष्टि भी बाबा की बेहद हो गई। भले वो 15-20 बच्चे बाबा के सामने बैठे रहते थे, तो बच्चों बाबा से पूछते थे बच्चे, बाबा आपने तो ऐसे आज मुरली चलाई जैसे कि पता नहीं कितने बच्चे आपके सामने हैं। तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं केवल इनको देख के थोड़ी मुरली चलाता हूँ, बाबा के आगे तो सारे विश्व के बच्चे हैं। और वो बच्चे जो आने वाले हैं, आने वाले बच्चे बहुत आएंगे, बच्चे बहुत आएंगे, आपको बहुत मकान बनाने पड़ेंगे, न जाने बाबा की कितनी बेहद दृष्टि और वृत्ति होती थी कि बच्चों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। तो लौकिक का तो फिर भी हद का होता है, ये दो बच्चों के लिए, ये तीन बच्चों के लिए, चार बच्चों के लिए, और बाबा के कितने बच्चे, अनगिनत हजारों तो क्या लाखों, ये सब बढ़ते जाएंगे। अभी भी बाबा कहते थे जब पांडव भवन केवल था और आगे माना ज्ञान सरोवर भी नहीं था, शांति वन भी नहीं था, तो कैसे बाबा को आता था, व्यक्त बाप दादा को भी, कि अभी इतना पांडव भवन तो छोटा हो गया, क्योंकि इतने बच्चे एक बार आ गए जो पांडव भवन में कहाँ समाएंगे, तो होटलों में रखना पड़ा बच्चों को। हिस्ट्री हॉल तो बहुत छोटा था, मेडिटेशन हॉल भी छोटा हो गया, तो जो पांडव भवन का आंगन है वहां पर अव्यक्त बाप दादा आए और मुरली चलाई, होटलों में बच्चे रहे क्योंकि जगह एकोमोडेशन थी नहीं। तो बाबा ने कहा कि और ढूंढो, और जमीन ढूंढो, मकान बनाओ। तो उस समय ओम शांति भवन जो है वहां पर वो एक पहाड़ जैसा था, तो वो उस वो खरीद लिया, पहाड़ खरीद लिया, और वो एक 1 रुपी पर स्क्वायर फुट वो जमीन मिली, जो पहाड़ की जमीन 1 रुपया स्क्वायर फुट। और कैसे वो पहाड़ को तोड़ा और ओम शांति भवन बना, और बाबा 1983 में वहां आए। तो जब बाबा हॉल में आए तो देखा हॉल तो फुल था, 3000 की कैपेसिटी वाला हॉल भर गया था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इस हॉल को तो भर दिया, तो हॉल तो अभी मिल गया पर रहने की जगह कहाँ है। पहले बाबा ने कहा कि हॉल कहाँ है, कहाँ बैठेंगे, तो पांडव भवन का जो आंगन था उसी को बना लिया टेंट लगा करके, वहीं बाबा आए। फिर हॉल बन गया ओम शांति भवन का, तो बाबा ने कहा हॉल तो बन गया, रहने की जगह कहाँ है। तो फिर जो ज्ञान सरोवर है वो जमीन मिली, और उसके बाद रहने की व्यवस्था बनाई वहाँ, और वहाँ का हारमोनी हॉल जो बना वो तो केवल 1600 की कैपेसिटी वाला हॉल है बस। तो बाबा जब हारमोनी हॉल में ज्ञान सरोवर में आए, बाबा ने देखा तो कहा कि ये हॉल तो बहुत छोटा है, आपको तो बड़ा हॉल चाहिए, ये छोटा हॉल कैसे चलेगा। तो अकोमोडेशन मिल गई पर वो हॉल तो छोटा है, तो इसलिए और बड़ा हॉल, अभी और बड़ा हॉल माउंट आबू में कहाँ मिलेगा। तो देखो इतना बड़ा विशाल हॉल ये बाबा ने बनवाया। तो इसीलिए बेहद के बाबा ने बेहद के बच्चों को अपना बना लिया। तो दाता है ना, हमको याद है जब पांडव भवन केवल था, तो पांडव भवन जब तक बना तो 1958 में पांडव भवन में आया, उसके पहले और मकान थे माउंट आबू में, पर 58 में पांडव भवन में आए। तो 58 में थोड़ा थोड़ा और बनाते गए तो भी 30 साल लगे पांडव भवन के और मकान बनाने में। मानो 88 तक जो कुछ भी बनाया, लेकिन उसके बाद वहाँ स्टॉप हो गया। तो 30 साल में इतना सब कुछ बना, लेकिन फिर जब ज्ञान सरोवर बना तो वो तो 30 महीने में बन गया हॉल, 30 महीने में, कहाँ 30 साल और कहाँ 30 महीना ज्ञान सरोवर में। और फिर जब ये डायमंड हॉल बना तो 30 हफ्ते में बन गया। तो देखो हम गिनती करते थे कैसे 30 हफ्ते में बन गया। क्यों, कैसे बना, क्योंकि सबका सहयोग था उसके आधार से। तो एक ब्रह्मा बाबा ने अपना बीज डाला, अपने तन मन धन का बीज डाला, और कैसे उस छोटे से बीज ने इतना बड़ा वृक्ष तैयार कर दिया। अगर उस समय ब्रह्मा बाबा सोचते कि ये तो मेरा परिवार, ये मेरा, तो आज ये विशाल परिवार बनता क्या, कभी नहीं बनता। तो इसीलिए इसके लिए दातापन की स्थिति चाहिए, और जितना हम सचमुच हम अनुभव करते हैं, जितना बड़ा दिल है, जितना दाता का दिल है, दरिया का दिल है, हाँ, जैसे दरिया सागर दाता है, तो उस दाता से कितना कुछ मिल सकता है। तो वही बाबा ने हम बच्चों का भी बनाया है। क्यों? क्योंकि सब हदें खत्म हो गई। दुनिया में हम देखते हैं कितनी हदें हैं, और दिन प्रतिदिन ये हदें बढ़ती जा रही है, क्योंकि देह अभिमान है। तो जहाँ देह अभिमान आएगा वहां तो हदें ही आएगी, तेरा मेरा ही आएगा। तो जाति की हद, भाषा की हद, रंग, यहाँ भारत में फिर भी रंग भेद नहीं है। आप विदेशों में जाइए, अमेरिका में जाइए, गोरे काले का अभी भी इतना भेद है, आपस में एक दो के दुश्मन है। गोरे कालों को नहीं देख सकते, काले गोरों को नहीं देख सकते, यानी इतने हदों में फंसे हुए हैं। भारत में जातियों में फंसे हुए हैं, न जाने क्या क्या कहाँ कहाँ हदें लगा के बैठे हैं। हमको आरक्षण चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सारे आरक्षण के पीछे जा रहे हैं। पहले जमाने में कहते थे भाई उन्नति हो, प्रगति हो, आगे बढ़े। अभी तो कहेंगे पिछड़े बने, पिछड़े बने तो फायदा है, पिछड़े कहलाएंगे तो आरक्षण मिलेगा, आगे बढ़ेंगे बड़े होंगे तो आरक्षण नहीं मिलेगा। बताओ, और पीछे जाना चाहते हैं। तो देखिए, सफलता भी चाहते हैं, पर सफलता में पिछड़ा बन करके सफलता चाहते हैं, तो मिलेगी क्या, क्या सफलता। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कितना बड़ा दिल बनाया है। और जैसे कहा जाता है, भाग्य से कम समय से पहले कुछ नहीं मिलता, सचमुच उसके लिए दाता का दिल बाबा ने बना दिया। यहां तक कि बाबा कहते हैं ये तन भी तुम्हारा नहीं है। तन के पीछे क्या नहीं इंसान कर रहा है, अपना समय, श्वास, संकल्प शक्ति, कितना धन क्या नहीं कर रहा है अपने तन के पीछे। मन भी तन के पीछे ही जा रहा है। भले कहते हैं कि जहां तन होगा वहां मन होगा, या जहां मन होगा वहां तन होगा, लेकिन ये तन और मन का इतना आपस में गहरा संबंध हो गया है। और बाबा कहते हैं ये मन को मेरे में लगाओ, इस तन में नहीं लगाओ, ये तन भी बाबा का समझो। इतने हद तक त्याग हो, पर वो त्याग माना इसका मतलब छोड़ो नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, फिर ये और बड़ी बात। कई समझते त्याग माना छोड़ना, छोड़ो कुछ भी नहीं पर फंसो कहीं भी नहीं, तब तो रहम दिल और कल्याणकारी और दाता बन सकेंगे, नहीं तो कैसे बन सकेंगे। इसलिए छोड़ना भी कुछ नहीं है, फंसना भी कहीं नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, क्योंकि नया जोड़ेंगे तो कहाँ कब वो हिसाब किताब चुकतू करेंगे, फंसेंगे तो और हिसाब किताब बनेंगे। हिसाब किताब बनने के ये सब तरीके हैं, फंसना, जोड़ना, इसलिए। और छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि हिसाब किताब जो है वो तो चुकतू करना ही है, छोड़ के जाएंगे भी कहाँ, इसीलिए छोड़ना भी नहीं है। आज तो बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग वाले जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनकी तो बड़ी महिमा कर दी, जो समर्पित है उनसे तो आगे प्रवृत्ति वाले जा रहे हैं। बाबा ने यहाँ तक कहा कि अगर समर्पित हैं परंतु अलबेले हैं तो वो थोड़ी राजाई पद पाएंगे। चलो अंत में थोड़ी बहुत दो तीन जन्म कुछ मिलेगा, बाकी तो दास दासी बनेंगे, महलों में रहेंगे। भले समर्पित हैं तो वहां महलों में रहेंगे राजाओं महाराजाओं के साथ, लेकिन दास दासी का रूप लिंग होगा, क्योंकि भरी डोनी पड़ेगी। यहाँ सेवा ले रहे हैं पर दे नहीं रहे हैं, तो फिर वहां पर भरी डोनी पड़ेगी, सेवा ही करनी पड़ेगी। लेकिन जो घर गृहस्थ में रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो पाठ भी बजाते हैं, ये पाठ भी बजाते हैं, पर बहुत अच्छी अवस्था है, बहुत सेवा करते हैं, तो वो तो बहुत ऊंचे बन सकते हैं, राजा भी बन सकते हैं, और प्रजा में भी बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। जो 21 जन्म तक प्रजा पद में ऊंचा पद पा सकते हैं, तो वो अच्छा 21 जन्म तक प्रजा पद ऊंचा पद पाना वो अच्छा, या दास दासी बन करके लास्ट में थोड़ा बहुत मिलना, जैसे मोचरा भी मिले और एक टुकड़ा मानी मिले, तो क्या पसंद है? इसीलिए कोई सोच रहे हम समर्पित हो जाएं, बाबा मना करते हैं। बच्चे नहीं, परिवार में रहो, बच्चे घर गृहस्थ में रहो, वो भी निभाना है। और ही चैरिटी बिगिन्स एट होम, उनकी भी सेवा करो। छोड़ना ये तो नफरत की निशानी है, सन्यासियों ने तो नफरत दिलाई। कैसे नफरत दिलाई, ये सब माया कहकर के नफरत दिलाई। स्त्री भी माया है, बच्चे भी माया है, धन भी माया है, माया 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 ये कहकर के नफरत दिलाई। बाबा कहते नफरत नहीं है, ये माया नहीं है, धन माया नहीं है, धन नहीं है तो खाएंगे कहां से, रहेंगे कहां, पहनेंगे क्या, धन तो जरूरी है लेकिन उसके प्रति जो लोभ है वो माया है, धन माया नहीं है। धन तो लक्ष्मी तो उसकी देवी है, लक्ष्मी का तो पूजन होता है, तो माया का पूजन करते हैं क्या? इसलिए धन बुरी चीज नहीं है, पर धन के प्रति आसक्ति लोभ, मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा, ये माया है। मेरा मेरा है तेरा भी मेरा है, तेरा सो मेरा, मेरे हाथ न लगा, तेरा जो है वो मेरा है पर मेरी चीज को हाथ मत लगाओ, तो ये तो कितनी बड़ी माया है। कोई सोचे बच्चे माया है, बाबा कहते नहीं, ये तो बिचारी नन्हे फूल हैं, ये तो महात्मा हैं, बच्चों को क्या पता, बच्चे का क्या दोष, भले वो आत्मा का हिसाब किताब है जो वहां जन्म लिया, लेकिन बच्चे को तो दोषी नहीं बनाएंगे ना। इसीलिए बच्चा तो महात्मा है, उसको माया क्यों कहते हैं? परंतु हाँ, उसके प्रति बहुत मोह है तो वो माया है, मोह माया है, लोभ माया है। स्त्री माया थोड़ी है, स्त्री तो शक्ति है, शक्ति है। और आजकल तो सरकार और भी आगे बढ़ा रही है माताओं को, बहनों को, तो शक्ति रूप अवतार देखना, शक्ति अवतार रूप में देखना है जो भारत को स्वर्ग बनाएगी। तो इसलिए बाबा कहते माया नहीं, पर उनके प्रति जो काम वासना है, जो उनके शरीर पर माना उनकी आसक्ति है या शरीर पर अधिकार रखते हैं पुरुष, ये माया जरूर है। उसका अपना जीवन है, उसकी अपनी आत्मा है। इसलिए बाबा ने माया क्या है उसका भी बाबा ने बहुत सुंदर अर्थ दिया। तो माया को हमें छोड़ना है। आज फिर बाबा ने और बात कह दी मुरली में, माया को भी दोष क्यों देते हो? आज बाबा ने कहा ना, माया को दोष क्यों देते हो? माया कई इसको ब्लेम गेम कहते हैं कि क्या करे बाबा, माया आ जाती है, माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते हैं माया को क्यों कहते हो? अपना दोष नहीं निकालते हो, माया का दोष निकालते हो। माया क्या है? कमजोरी ही तो है। एक बार मेरे से किसी ने प्रश्न किया कि समझो हमारे जीवन में कई परीक्षाएं आती है, कई बातें आती है, तो आखिर उसका दोषी कौन? क्या हम ये कहेंगे कि ये माया ने परीक्षा लाई, या दूसरे लोगों ने परीक्षा लाई, या मेरे ही अपने कर्मों का हिसाब किताब है जो परीक्षा आई? क्या कहेंगे? ये परीक्षा जो मेरे जीवन में आई, कोई भी प्रकार की परीक्षा, वो माया ने परीक्षा लाई, या मित्र संबंधियों ने, या और लोगों ने ये परीक्षा हमें दी, या हमारे अपने हिसाब किताब है कर्मों के? क्या कहेंगे? अपने ही हिसाब किताब है। तो हम न माया को दोष दे सकते हैं, न किसी और को दोष दे सकते हैं। लेकिन बचपन से ही हमें ये सिखाया गया है, सच पूछो, दूसरे को दोष देना। सबसे पहली बात, एक बच्चे को माँ चलना सिखाती है, हाथ पकड़ करके उसको चलाती है। छोटा बच्चा भी चलना सीखा नहीं है, पर वो भी वो चलो 9-10 मास का हुआ, उसका हाथ पकड़ करके वो चलाती है। परंतु कहीं थोड़ा ध्यान हट गया और बच्चा गिर गया। अब दोष तो माँ का था, क्यों बच्चा गिरा? पकड़ रही है तो उसको छोड़ा क्यों? अब बच्चा गिर गया, अभी माँ अपना दोष नहीं निकालेगी, वो क्या करेगी? बच्चे का भी दोष नहीं निकालेगी, वो धरती का दोष निकालेगी। धरती तो छिछी, तो मेरे बच्चे को गिरा दिया, तो किसका दोष हुआ? क्योंकि बच्चा रोएगा, बच्चा रोएगा तो बच्चा रोना नहीं चाहिए, ये भी माँ सोचती है। अपना दोष तो नहीं कहेगी कि मैंने ध्यान नहीं दिया, बच्चे का भी दोष नहीं, तो धरती का दोष है। तो बच्चा खुश हो जाता है, वाह मैं अपने दोष कारण थोड़ी गिरा, धरती का दोष है, उसने मुझे गिराया। तो बचपन से ही ये जो बच्चे की बुद्धि में आ गया कि दोषी दूसरा है, मैं नहीं हूं। माँ ने भी सोचा मैं नहीं हूं, ये धरती है, बच्चे को भी कैसे कहे दोषी है। लेकिन ये दोष दूसरे का है ये बुद्धि में बैठ गया, तो मुझे बदलना है ये नहीं सोचते, उसने ऐसे किया। इसीलिए तो कहते ना, ये तीन उंगली अपने तरफ, एक उंगली उसके तरफ, उसको बदलना जरूर है, इसीलिए परीक्षा आई, ठीक है, लेकिन तीन गुना दोष तो मेरा है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुझे बदलना है, परीक्षा परीक्षा माया 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 ये मत सोचो। माया कुछ नहीं है, ये तो कागज का शेर है। माया का तूफान आया, माया का तूफान आया, ये खुद कमजोर है तो माया का तूफान कह देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं कमजोर हूं, ये भी मत कहो, पर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये सोचा तो अंदर से आ जाएगी, वो स्थिति आएगी अंदर से, कि अंदर ही है सब कुछ, बाकी बाहर तो कुछ नहीं है, आपके अंदर ही है, उसी को ही उजागर करना, उसी को ही अनुभव में लाना है, वही सोई हुई शक्ति है, उसको ऊपर लाना है। कई ऐसे है जो कहेंगे मैं तो बहुत कमजोर हूं। एक बच्चा भी अगर वो कमजोर है और माँ उसको कहे तुम बहुत कमजोर हो, तुम बहुत बुद्धू हो, तुम तो नालायक हो, तुम तो ऐसे हो, तो वो माँ भी कैसी, वो बच्चा उसका आगे कैसे जाएगा। तो अगर वो कमजोर है भी, बुद्धू है भी, परंतु माँ उसको कहे नहीं तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत कर सकते हो, बहुत कर सकते हो, तो वो बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है। तो ये मन की स्थिति की फीडिंग है, मन की कैसी हम फीडिंग करते हैं, अंदर में क्या संकल्प लाते हैं, उसी अनुसार हमारी स्थिति बनती है। तो हमको दाता बनना है, हमको दाता बनना है, देवता बनना है, देवता बनना है, दाता बनना है। हमको दुआएं लेनी है, पर दुआएं लेनी है ये भी सोचना नहीं है, ये भी एक स्वार्थ हो जाएगा, मुझे दुआएं लेनी है, लेने का नहीं सोचना है, देना है, दाता बनना है, रहम दिल बनना है, परोपकारी बनना है, कल्याणकारी बनना है, सबको सुख देना है। ये अगर बुद्धि में आएगा, दुआएं अपने आप मिलेगी, दुआएं मांगी नहीं जाती है, दुआएं तो दिल से निकलती है, परंतु क्या देना होता है, दिल से सेवा करनी होती है बस। तो बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, घर वालों की भी सेवा करो। तो बाबा ने हमको सन्यासी तो बनाया नहीं है, बेहद के सन्यासी जरूर है, हद के नहीं है, इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, नया जोड़ना भी कुछ नहीं है, फंसना भी कहीं नहीं है। तो क्या करना है, चौथी बात, चौथा कौन सा शब्द है जो करना है, छोड़ना नहीं है, फंसना नहीं है, जोड़ना नहीं है, तो क्या करना है, निभाना है, क्योंकि हिसाब किताब अभी बहुत बाकी है, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, इसीलिए जा तो कहीं सकते नहीं है। कोई सोचे मर जाऊं तो अच्छा है, बाबा कहते वो तो और पाप अपने ऊपर चढ़ाया, अपने ऊपर पाप चढ़ाया, कितना पाप अपने ऊपर चढ़ाया। अगर अपना ही सुसाइड कोई करते हैं तो बहुत बड़ा पाप है। कोई डॉक्टर भी अगर किसी को ऐसे गलत दवाई दे, कितनी बड़ी सजा उसको मिल जाती है, भले उसके मन में कुछ भी ना हो, लेकिन गलत दवा मिल गई तो भी उसको सजा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि निभाना भी जरूर है और दाता भी बनना जरूर है। उसके लिए बुद्धि से छोड़ो तो छूटो, तो इंग्लिश में कहावत है लेट गो एंड लेट गॉड, बाबा को छोड़ दो, बोझ अपने सिर पर मत उठाओ। बाबा कई बार कहते हैं बोझ मुझे दे दो, अगर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत अंदर में बोझ लगता है, बाबा आप संभालो, बाबा आप ही दाता हो, आप ही सब कुछ करो, मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं, वो सच्चाई बताओ, हाँ बाबा ये मेरे वश की बात नहीं है, और मैं तो बाबा आपका हूँ, ये सब आपका है, आप जानो, आपका कार्य जाने, और सचमुच आप देखेंगे कैसे बाबा पर वो जिम्मेदारी दो तो बाबा उसको कैसे रास्ता निकालेगा, क्योंकि आपके अंदर में वो पॉजिटिव थिंकिंग आ गई। बहुत सुनते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच के बारे में, लेकिन वो सोच तब आएगी जब हम अपने अंदर में वो शक्ति भरेंगे, सोच से शक्ति भरेगी, और शक्ति से ही फिर वही सोच आएंगे और हम उस परिस्थिति का सहज सामना कर सकेंगे और फिर प्रकृति दासी भी बन जाएगी। छोड़ो तो छूटो, बहुत सुंदर स्थिति सचमुच हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही शर्त है और वो आज भी बाबा ने मुरली में कही, बाबा को कहो बाबा जो हुकुम, जो बाबा की श्रीमत, उस श्रीमत पर मुझे चलना है। बाबा ने आज बताया जो हुकुम क्या, धर्म पिताएं भी आएंगे बाबा के पास और क्या लेकर जाएंगे, एक अंचली लेके जाएंगे। कैसे? बस एक को याद करो, ये लेकर जाएंगे संदेश और फिर अपने धर्म की स्थापना करेंगे, इतना ही संदेश लेकर जाएंगे। ये अंगुली ऊपर दिखाई जाएगी, उनको याद करो और यही संदेश उनको मिलेगा और उसी संदेश से उनको शक्ति आएगी जो अगले कल्प में वो धर्म की स्थापना करेंगे। इसलिए सब ने एक के तरफ इशारा किया है, तो हमारा कहीं और इशारा है क्या? एक की तरफ ही है, तो हम भी, हमारा भी अगर एक की तरफ ही इशारा है तो उससे तो हम तो सागर से, दाता से, सूर्य से सारा प्रकाश ले रहे हैं, शक्ति ले रहे हैं, वरदानों से भरपूर हो रहे हैं, खजाना भरपूर हो रहा है, बस दाता बन के देना है, रहम दिल बन के देना है, कल्याणकारी बन के देना है ना। सब उसके लिए तैयार कि तेरा सो तेरा, मेरा मेरा तो मेरा ही, तेरा भी मेरा। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना। और ये चलो बाबा का है, हमारा तो कुछ नहीं है। सचमुच ये अगर भावना है तो हम सब का है, तो हम सब देवता बहुत सहज बन सकते हैं, प्रकृति दासी सहज बना सकते हैं। न्यारे और प्यारे बन के रहेंगे तो दाता बन करके सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो, इस शिवरात्रि पर जरूर अंदर में जो भी आपकी कमियां कमजोरियां हैं सब शिव बाबा पर सुहा करना, तो देखो बाबा राजी होंगे तो क्या नहीं चमत्कार करेंगे।
Keep on.